अर्चेद अरविंदाक्षम्
अर्चेद अरविंदाक्षम्
मत्या शब्द है धन्यवाद एवं तात्पर्य जीवानी का जैसे भक्ति दाम स्वामी श्री प्रभुपाद जी द्वारा श्री प्रभुपाद की फाल्गुनस्य फाल्गुन मास फरवरी मार्च को अम्ले शुक्ल पक्ष पक्षे पखवाड़े में द्वादशम 12 दिनों तक जिसका अंत द्वादशी के दिन होता है पया व्रतम केवल दूध ग्रहण करने का व्रत अर्चये पूजा करें अरविंदक्षम कमल नयन भगवान की भक्त्या भक्ति के साथ परमया शुद्ध अन्वित से युक्त। इसका अनुवाद इस प्रकार है फाल्गुन मास फरवरी मार्च के शुक्ल पक्ष में द्वादशी तक के 12 दिनों तक मनुष्य को केवल दूध पर आश्रित रहकर व्रत करना चाहिए और भक्ति पूर्वक कमल नयन भगवान की पूजा करनी चाहिए। तात्पर्य भक्ति पूर्वक भगवान विष्णु की पूजा करने का अर्थ है अर्चना मार्ग का अनुसरण करना श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। मनुष्य को भगवान विष्णु या कृष्ण के अर्चा विग्रह की स्थापना करके उन्हें वस्त्राभूषित करके फूलों की मालाओं से अलंकृत करके पूजन करना चाहिए और फल फूल तथा घी शक्कर और अन्न से तैयार किए गए सभी प्रकार के भोजन अर्पित करने चाहिए और घंटी बजाते हुए उसकी आरती करनी चाहिए और दीप जलाकर अगुरु इत्यादि समर्पित करना चाहिए। यह भगवान की पूजा अर्चना कहलाती है। यहाँ पर संस्तुति की गई है कि केवल दूध पीकर व्रत रखा जाए, यह पयोव्रत कहलाता है। जिस प्रकार हम लोग सामान्यतया एकादशी को अन्न न खाकर भक्ति करते हैं उसी तरह यह संस्तुति की जाती है कि द्वादशी के दिन दूध के अतिरिक्त और कुछ न खाया पिया जाए। पयोव्रत तथा भगवान की अर्चन भक्ति शुद्ध भक्ति भाव भक्त्या से की जानी चाहिए। भक्ति के बिना भगवान की पूजा नहीं की जा सकती। भक्त्या मम अभिजानंती यावन शास्व तत्पदा। यदि कोई भगवान को जानना चाहता है भगवान से सीधे जुड़ना चाहता है तो वह यह जान कर कि ये वे क्या खाते हैं और किस तरह प्रसन्न होते हैं भक्ति योग का पालन करें। जैसे यहाँ पर भी संस्तुति की गई है भक्त्या परमयान्वित मनुष्य को शुद्ध भक्ति से परिपूरित होना चाहिए। अवज्ञान्तिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामयं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सह गण रघुनाथन्वितं तं सचिवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सह गणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नाम्ने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशदायिने नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्त सरस्वती नाम्ने श्रीवाषवानवी देवी दयिताय कृपापदे कृष्णसम्बन्ध विज्ञानदायिने कर्वे नमः माधुरोज्वलप्रेमाद्य श्रीरूपानुगभक्तिर श्रीगौरकरुणाशक्ति विग्रहाय नमस्ते नमस्ते गौरवाणि श्रीमूर्तये दीर्घदारिणे नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौरशक्ति विशेषकर मैं सभी उपस्थित भक्तों से प्रार्थना करना चाहूँगा कि ये मेरी पहली भागवतम क्लास है, विशेषकर कि सर वरिष्ठ भक्तों से, इसके लिए शुक्र कृष्ण जी, मूल्य कृष्ण जी, श्याम कृष्ण गोरा, अन्य आदि वरिष्ठ भक्तों से कि आशीर्वाद दें ताकि भगवान के गुणगान के लिए, अपने शुद्धिकरण के लिए कुछ भागवतम पर बोल सकें। तो ये जो भागवतम का अभी जो कॉन्टेक्स्ट चल रहा है, ये आप सब परिचित होंगे इससे कि बलि महाराज ने इंद्र की राजधानी अमरावती पे चढ़ाई की और फिर इंद्र को वहाँ से खदेड़ भगाया, और उसके बाद वहाँ पे जो अदिति माता हैं वो अपने पुत्रों के विलाप में बहुत शोक अपना व्यक्त कर रही थी कश्यप मुनि से। कश्यप मुनि आते हैं, उनसे कई प्रश्न पूछते हैं कि क्या हो गया, क्यों इतना दुख है आपको, किस बात का, और फिर करते करते फाइनली अदिति माँ ने अपना दुख प्रकट किया कि क्या दुख है उनका। ये 22वें नंबर के श्लोक से अदिति माँ ने इसको एक्सप्रेस करना शुरू किया था कि नाहम विधिना ब्रह्मपतिम यथा मे सत्य संकल्प विद्यातम मनोरथम। हे ब्राह्मण, मुझे ये विधि विधान बदलाएं जिससे मैं जगन्नाथ की पूजा कर सकूं, भगवान मुझसे प्रसन्न होकर मेरे समस्त इच्छाओं को पूरा कर दें। फिर पिछले सैटरडे कृष्ण ने क्लास ली थी 23rd वर्स में, तो इसमें भी बहुत डीप अपना डिस्ट्रेस, बहुत डीप अपना दुख एक्सप्रेस किया था अदिति माँ ने, और वहाँ बताया था 23rd वर्ष में, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, कृपा करके मुझे भगवान की भक्ति पूर्वक पूजा की पूर्ण विधि का उपदेश दें जिससे भगवान मुझ पर तुरंत ही प्रसन्न हो जाएं और मुझे मेरे पुत्र सहित इस अत्यंत संकटपूर्ण परिस्थिति से उबार लें। आशु तुष्यति, मतलब कि ऐसा कुछ बताएं जिससे कि बहुत ही कम समय में भगवान को मैं तुष्ट कर सकूँ। आशु तुष्यति दुख का वर्ण दिया था सिद्धांत्य सह पुत्र के, कि जितने संकट हमारे ऊपर आए हुए हैं उसको जल्दी से जल्दी खत्म कर सकें। और फिर कल के श्लोक से, कल का श्लोक 24वां श्लोक था, तो उसमें कश्यप जी ने उनको ये विधि बताना शुरू किया था, और विधि में उन्होंने एक्सप्रेस किया था कि जो ये विधि बता रहे हैं वो एक्चुअली उन्होंने ब्रह्मा जी से प्राप्त किया है, तो इसमें कि पूरा गुरु परंपरा के बारे में एक विवरण दिया हुआ था तात्पर्य श्री प्रभुपाद ने कि कोई भी व्यक्ति अपने मनगढ़ंत तरीके से इसकी व्याख्या नहीं कर सकता, कोई भी नया प्रोसेस नहीं बना सकता अपने मन के द्वारा। और फिर आज का जो वर्ष है उसमें ये प्रोसेस को बताना शुरू कर रहे हैं, और कश्यप मुनि इस प्रोसेस को बता रहे हैं। प्रोसेस क्या है, फाल्गुनस्यामले पक्षे, कि जो फाल्गुन मास है, फाल्गुन मास हमारा ये फरवरी मार्च के मंथ में आता है, फरवरी मार्च के मंथ में आता है ये फाल्गुन मास। और ये शुरू कब से करना है इस व्रत को, अम्ले पक्षे मतलब ये शुक्ल पक्ष में शुरू करना, ये आपके गौर पूर्णिमा से 15 दिन पहले, तो ये जो शुक्ल पक्ष आता है उस टाइम पे, और ये कुछ 12 दिन का व्रत है जो द्वादशी को अंत होगा। तो द्वादशी का दिन जैसे शुक्ल पक्ष फाल्गुन का पड़ता है, उसमें हमारे बहुत ही महान आचार्य श्री माधवेन्द्र जी का तिरुभाव तिथि भी होती है, तो उस दिन को हम सेलिब्रेट करते हैं ऐसे। और ये उन्होंने बताया कि समय क्या है और किस समय पर करना है, और फिर फाइनली क्या आहार लेना है उस व्रत में। आहार बताया है कि केवल दूध पर आश्रित रहकर, दूध एवं आगे वर्सेज में बताएंगे दूध और एवं खीर भी एक्सेप्ट कर सकते हैं उसमें। और सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट था उसमें जो कश्यप मुनि ने एम्फसाइज किया था, वो था भक्ते परमयान्वित, कि दैट इज कि भगवान की भक्ति पूर्वक पूजा करके, ये सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट था इसमें। तो आज हम चर्चा इन तीन विषयों पर करेंगे, एक कश्यप मुनि के दक्षता के ऊपर कि कश्यप मुनि ने किस दक्षता के साथ अदिति माता को भगवान की सेवा में लगाया। सेकंड कि जो अर्चन विधि है श्रील प्रभुपाद जी ने मतलब इस्कॉन सोसाइटी के लिए, हमारे इस संस्था के लिए कितने प्रैक्टिकल चीज़ें दी हैं जिससे कि हम भी डायरेक्टली भगवान की प्रेमयी भक्ति सेवा को प्राप्त कर सकते हैं। और लास्ट पार्ट कि भक्ति की कितनी एक्चुअली भक्ति के बिना हम भगवान को संतुष्ट नहीं कर सकते, जो इस पूरे वर्ष में बताया गया भक्ति और परम मानवता। इसमें एक वर्ष एक क्वेश्चन बहुत अच्छा आया हुआ, इसमें अरविंदाक्षम यूज किया गया है, अरविंदाक्षम वर्ड। तो ये बताया जाता है कि अरविंदाक्षम वर्ड कई बार भगवान को डायरेक्टली विष्णु या परम पुरुषोत्तम ना कहकर जो देवता समाज होता है वो भगवान को संबोधित करता है कमल नयन अरविंदाक्षम इन सारे शब्दों से, क्योंकि जो भगवान की सुंदरता बताई गई है उसमें जो सबसे यूनिक फीचर भगवान की सुंदरता का है वो है भगवान की आँखें। क्योंकि बाकी देवी देवताओं की और बाकी देवता जितने भी हैं उनकी आंखों का ऐसा कोई वर्णन नहीं आता कि बहुत सुंदर है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे जैसे चौथे स्कंद में जब दक्ष प्रजापति इनको शुभदेव शिव जी को जब भर्त्सना करना शुरू करते हैं, उनकी आलोचना शुरू करते हैं, तो उस टाइम पे वो एक वर्ड यूज करते हैं, बोलते हैं मरकटलोचन मरकटलोचन करते हैं कि इसकी आंखें बंदर जैसी हैं। तो शिव जी को ऐसा बोला, मतलब कहने का एक भड़ास को निकाली रहती है अपनी वो कि हाँ तुम खड़े नहीं हुए जब मैं प्रवेश किया इसमें। पर साथ ही साथ ये भी है कि बाकी अन्य देवताओं की आंखें भी सुंदर नहीं होती हैं जितनी भगवान की कमल नयन है अरविंदाक्षम। तो कई ऐसी प्रमुख प्रार्थनाओं में ये भगवान का ये अरविंदाक्षम कमल नयन और कई अन्य शब्दों में व्याख्या की जाती है। और फिर अगला है भक्ति परम्यान्विता। तो इसे शुरू करने से पहले अगर हम देखें कॉन्टेक्स्ट को, तो कश्यप मुनि की दक्षता, कश्यप मुनि की दो वाइफ थी अदिति और अदिति, और दोनों का ही प्रसंग भागवत में मिलता है हमें। जब अदिति अपने अपने बच्चों के वियोग में इस पयोव्रत का विधि जानने की कोशिश करती हैं, और साथ ही दिति माता जब उनके दो सबसे बड़े पुत्र जो हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु का वध किया था भगवान विष्णु ने, तो इंद्र से रिवेंज लेने के लिए प्रतिशोध लेने के लिए उन्होंने ये पुंसन व्रत का पालन किया था। तो उस पुंसन व्रत में भी अगर डिटेल्स में देखेंगे पुंसन व्रत के, तो कश्यप मुनि ने बहुत डिटेल में समझाया था कि किस समय करना है, किस समय में शुरू होगा, अग्रण्य मास में जट इस दिसंबर नवंबर दिसंबर में मास शुरू होता है कार्तिक के जस्ट बाद, एक साल का व्रत है, कार्तिक की पुण्या पे खत्म होगा, और फिर इसमें क्या खाना है, क्या क्या तपस्याएं फॉलो करनी है एंड सो फोर्थ। और सेम चीज पयोव्रत में जो आगे आएगा कि सेम चीज अदिति को कश्यप मुनि समझाएंगे कि किस प्रकार से आपको इन व्रतों का पालन करना है, क्या खाना है, क्या चीज करनी है एंड सो फोर्थ। तो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट में आता है कश्यप मुनि का, कश्यप मुनि ने इस पूरे इवेंट में अपनी दोनों जो पत्नियां हैं उनके डायरेक्ट कॉज को एड्रेस ना करते हुए उन्होंने उनके ग्रेजुअल प्यूरिफिकेशन मतलब समय के साथ धीरे धीरे प्यूरिफिकेशन के प्रोसेस को ज्यादा ग्लोरीफाई किया। इन द सेंस जैसे दिति का केस देखें, तो दिति पुत्र चाहती थी इंद्र को मारने के लिए कि मेरे को पुत्र मिले इंद्र को मारने के लिए, और यहाँ पे सेम चीज अदिति के साथ है कि अदिति चाहती है कि जो मेरे पुत्र हैं वापस आके इंद्र की राजधानी में अपना स्वीकार करें अपनी पोजिशन, और इन बलि महाराज को और जो दैत्य वगैरह आ चुके हैं उनको यहाँ से बाहर कर सकें। बट यहाँ देखिए कश्यप मुनि सोल्यूशन ऐसा कोई पॉलिटिकल सोल्यूशन नहीं दे रहे हैं कि आप हटाइए इनको या इनको यहाँ से बाहर करिए, नो सो फोर्थ। वो क्या दे रहे हैं, सो दक्ष कि वो एंगेज कर रहे हैं दिति अदिति दोनों को भगवान विष्णु की सेवा में। जय श्री राधा राधे कृष्ण जी की, जय कृष्ण बलराम की, जय जगन्नाथ सुभद्रा महारानी की, जय। और सेम चीज आप देखेंगे कि वेदमहर्षि गुरु परंपरा हमारे हमारे भी पूरे पूरे इस कृष्ण कॉन्शियस प्रोसेस में ये अर्चना की विधि दी गई है, जिसमें कि प्रभुपाद जी ने हम सभी को एक बहुत ही प्रैक्टिकल स्पिरिचुअल लाइफस्टाइल से अवगत कराने के लिए और प्रोसेस डिफाइन कर रखा है। जैसे कि हम लोग रोज सुबह मंगल आरती में भी गाते हैं शिव विग्रह आराधना नित्य नान श्रृंगार तन मंदिर मार्जना दो युक्त से भक्ताम शनि उंजतोपि वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। तो उसमें दैट इज युक्त से भक्ताम से नियुंजतोपि कि इवन वी मे बी कमिंग विथ सो मेनी फॉल्ट्स, वी मे बी कमिंग विथ सो मेनी अवर ओन कंडीशनिंग में भी कमिंग सो मेनी अपने पुरानी आदतों के कारण जो भक्ति में आते हैं जिस कारण से भी हमारे होते हैं भक्ति में बट सम और तो गुरु परंपरा की सबसे बड़ी हमारे ऊपर कृपा है वो ये है कि हमें वो भक्ति के डायरेक्ट प्रोसेस में एंगेज करते हैं जिससे हमारा एक ग्रेजुअल प्योरिफिकेशन हो पाता है। इसमें प्रभुपाद जी ने विस्तार से बताया हुआ है अर्चन विधि के ऊपर और अर्चना बहुत ही एक जरूरी पार्ट है हमारे कृष्णा कॉन्शियसनेस का। इसके ऊपर जो वर्ष प्रभुपाद ने कोट किया है 7th कैंटो का उसके तात्पर्य से मैं कुछ पढ़ना चाहूँगा। ये 7वें स्कंध का 5वें अध्याय का 23वां वर्ष है और इसके तात्पर्य में श्री प्रभुपाद ने अर्चना की विधि के ऊपर काफ़ी लंबा एक परपट दे रखा है और इसमें से कुछ मुख्य पॉइंट्स पे ध्यान देंगे। पाद सेवनम के बाद अर्चना अर्थात अर्च विग्रह की पूजा की बारी आती है। यदि कोई सचमुच अर्चना विधि में रुचि रखते हैं तो उसे अवश्य ही प्रमाणिक गुरु की शरण ग्रहण करके इस विधि को सीखना चाहिए। अर्चनम के लिए अनेक पुस्तकें हैं जिनमें से नारद पांच रात्र विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इस युग में अर्चन के लिए पंचरात्र पद्धति की विशेष रूप से संस्तुति की जाती है। अर्चन की दो पद्धतियां हैं भागवत पद्धति तथा पंचरात्र की पद्धति। श्रीमद् भागवतम में पंचरात्र की पूजा की कोई संस्तुति नहीं है क्योंकि इस कलयुग में अर्च विग्रहों की पूजा के बिना भी केवल श्रवण कीर्तन स्मरण तथा पाद सेवनम से सब कुछ पूरी तरह संपन्न हो सकता है। फर्दर बता रहे हैं कि एक बहुत बड़ी स्तुति आई उसमें जिसमें कि मेंशन कर रहे हैं कि कौन कौन से पर्टिकुलर आचार्य रहे हैं पर्टिकुलर 9 प्रोसेस जो हैं जैसे कि परीक्षित महाराज श्रवण के लिए शुद्ध गोस्वामी कीर्तन के लिए एंड सो फोर्थ। और फिर फर्दर इसमें बता रहे हैं कि अतएव यह संस्तुति की जाती है कि दीक्षित भक्त मंदिर में अर्चा विग्रह की पूजा करके नारद पांच रात्र के नियमों का पालन करें। ऐसे गृहस्थ भक्त जिनके पास प्रचुर भौतिक संपत्ति है उनके लिए अर्च्य विग्रह विधि की प्रबल संस्तुति की जाती है। ऐश्वर्यवान गृहस्थ भक्त जो अपने कठिन कमाई की पूंजी भगवान की सेवा में नहीं लगाता वो कंजूस कहलाता है। मनुष्य को चाहिए कि अर्च्य विग्रह पूजा के लिए वेतन भोगी ब्राह्मण न लगाए। यदि कोई स्वयं अर्चन न करके वेतन भोगी सेवक लगाता है तो आलसी माना जाता है और उसकी अर्च्य विग्रह पूजा कृत्रिम मानी जाती है। ऐश्वर्यवान गृहस्थ अर्च्य विग्रह की पूजा के लिए उच्च कोटि की सामग्री जुटा सकते हैं और फलस्वरूप उसके लिए अर्च्य विग्रह पूजा अनिवार्य है। हमारे कृष्ण भावनात आंदोलन में ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ तथा सन्यासी होते हैं किंतु मंदिर में अर्च्य विग्रह का विग्रह पूजा का कार्य विशेष रूप से गृहस्थों द्वारा संपन्न किया जाना चाहिए। ब्रह्मचारीगण सन्यासियों के साथ प्रचार करने के लिए जा सकते हैं और वानप्रस्थी अपने अगले आश्रम सन्यास की तैयारी करते रहना चाहिए किंतु गृहस्थ भक्त सामान्यतया भौतिक कार्यकलापों में संलग्न रहते हैं अतः यदि वे आज अर्च विग्रह पूजा नहीं करते तो उनका पतन निश्चित है। अर्च विग्रह पूजा का अर्थ है विधि विधानों का सही सही पालन करना। इससे मनुष्य भक्ति में स्थिर रह सकेंगे। सामान्यतया गृहस्थ के बच्चे होते हैं और जब गृहस्थ की पत्नियों को अपने बच्चों के पालन पोषण में उसी तरह व्यस्त रहना चाहिए जिस तरह नर्सरी स्कूल में बच्चों की देखरेख के लिए अध्यापिकाएं होती हैं। गृहस्थ भक्तों को चाहिए कि वे गुरु द्वारा दिए गए आदेशों तथा उपयुक्त व्यवस्थाओं द्वारा अर्चन विधि या अर्च विग्रह पूजा करके जो लोग मंदिर में अर्चन नहीं कर सकते उनके लिए अग्नि पुराण का यह कथन है। यदि कोई गृहस्थ भक्त परिस्थितिवश अर्चन नहीं कर सकता तो उसे चाहिए कि कम से कम अर्चन होते देखे और इस तरह वह भी सफलता प्राप्त कर सकता है। अर्चन का विशेष प्रयोजन अपने आप को शुद्ध तथा स्वच्छ रखना है। गृहस्थ भक्तों की स्वच्छता का आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए। और फिर फर्दर श्रील प्रभुपाद ने पर्पट्स में 64 सेवा अपराधों का वर्णन करते हैं अलग पुराणों से वरा पुराण से कोट किया हुआ है अग्नि पुराण से। तो ये एक स्मॉल में हमने अर्चना के बारे में जानने की कोशिश की कि अर्चन विधि बहुत जरूरी है और खास करके गृहस्थ भक्तों के लिए बहुत जरूरी है कि अर्चन विधि को पालन करें घर में करें अन्यथा मंदिर में करें क्योंकि जो अर्चना है ये हमें बहुत ही डे टू डे प्रैक्टिकल सर्विस में लगाती है भगवान के। फिर नेक्स्ट एक मैसेज आता है कि जो भगवान की ड्यूटी का डिस्क्रिप्शन यहाँ दिया हुआ है और इवन जो ड्यूटी वर्शिप इतनी ज़्यादा जरूरी क्यों है हमारे संप्रदाय में, और इवन भक्ति किसी भी आप एलिमेंट में देखेंगे तो डीडी वर्शिप एक बहुत क्रुशल रोल प्ले करती है। अगर आप फेस्टिवल्स सोचिए, अगर फेस्टिवल्स आप डीडी वर्शिप के बिना सोच नहीं सकते, इवन जगन्नाथपुरी में जो रथ यात्रा फेस्टिवल होता है ओवरऑल खाली डीटी के ही ऊपर बेस्ड है। जगन्नाथ जी, बलदेव, सुभद्रा, कोई भी फेस्टिवल आप सेलिब्रेट करिए, उन फेस्टिवल्स में डीटी जी सबसे प्रमुख पार्ट होती हैं। तो डीटी फॉर्म्स द बेसिस ऑफ ऑल अवर फाउंडेशन ऑफ भक्ति बेसिकली। इसका मुख्य एक और कारण बताया जाता है कि अगर हम डीटी वर्शिप ना किसी भी एक रिलीजियस सिस्टम से, किसी भी एक धार्मिक पद्धति से अगर इसको निकाल देते हैं, तब देखेंगे कि उस पद्धति में, उस प्रोसेस में जो जो मतलब कि जो लक्ष्य है वहाँ तक पहुँचने का, आपके भगवान को, भगवान का साक्षात्कार करना, भगवान को समझ पाना, वो बहुत ही कठिन होता है। जैसे कि जो सेमेटिक रिलीजन्स होते हैं, जैसे कि आपके जो सनातन धर्म को फॉलो नहीं करते हैं, जैसे कि आपके इस्लाम हुआ, क्रिश्चियनिटी हुई, ज्यूज हुए, और अन्यथा और भी अलग अलग जो धर्म होते हैं, उन धर्मों में डीटी वर्शिप का कोई भी प्रावधान नहीं है। अगर आप उठा के देखें तो क्रिश्चियनिटी में नहीं है, इस्लाम में तो बहुत ही स्ट्रांग इसका खंडन किया गया है, और इवन आप और भी किसी सेक्ट ऑफ रिलीजन को देखें। मेन रीजन बीइंग ऐसा क्यों बोला गया है, क्योंकि इन रिलीजन्स में ओवरऑल जो इसके पीछे रीजन बताया गया कि क्यों वर्शिप नहीं करते, उनका एक ही मानना है कि जो पर ब्रह्म है, जो परम पुरुषोत्तम भगवान बेसिकली, जो ब्रह्म जिनपे वो लीन होना चाहते हैं, और इवन जो इम्पर्सनल भगवान का जो कंसेप्ट है, इम्पर्सनल एब्सोल्यूट ट्रुथ का जो कंसेप्ट इन रिलीजन में एग्जिस्ट करता है, वो कभी भी इस चीज़ को स्वीकार नहीं कर सकते कि वो परम सत्य किसी मैटर में आ सकता है, किसी मैटर में आ सकता है। बट ये दक्षता आप देखेंगे भक्ति के विज्ञान में है। इवन जैव धर्म में भक्तिराव ठाकुर जी ने एक्सप्लेन किया है कि एक्चुअली भक्ति इस सारे प्रोसेसेस से इतना शक्तिशाली क्यों है। इसका एकमात्र रीजन ये है क्योंकि भक्ति में ना आप डायरेक्टली मैटर को एंगेज कर सकते हैं भगवान की सेवा में। अर्थ विग्रहों के माध्यम से आप एक जो स्वरूप, जो रूप होता है ना, जिसके प्रति एक जीवात्मा का आकर्षण होता है। जैसे उदाहरण लीजिएगा आपकी हमारी जो पांचों इंद्रियां हैं, पांचों इंद्रियों में सबसे जीवा सबसे बलवान बताई गई है, बट उनमें से भी जीवा से भी जो नेक्स्ट बलवान बताई गई है वो होती है आंखें। द आईज ऑलवेज हैव अ टेंडेंसी टू सी सम ब्यूटीफुल फॉर्म्स। इवन अभी पीछे इस ग्रेस सद्गत कर्म पूज आए थे, तो उन्होंने एक बहुत अच्छा सेमिनार भी लिया था, इवन उन्होंने एक पेपर पब्लिश किया हुआ है वो राजा पुरंजन की स्टोरी पे। तो इस पेपर को अगर आप स्टडी करेंगे तो बहुत ही इंटरेस्टिंग पेपर है। इसमें ये बताया गया है कि जो जीवात्मा होती है, जो पुरंजन की स्टोरी से, वो अपने नौ शरीर के नौ द्वारों से बाहर निकल के इस संसार को भोगने की बहुत तीव्र इच्छा होती है उसके अंदर। तो जो आंखें होती हैं उससे बताते हैं कि आंखों के द्वारा वो इस पूरे संसार के सुंदर सुंदर रूपों का ना भोग करना चाहता है। और इस चीज़ का आप प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी देखेंगे डे टू डे लाइफ में कि जितनी भी चीज़ें हमें फॉर्म के रूप में अट्रैक्ट करती हैं, मतलब दे आर वेरी टेम्पररी नेचर। जैसे कि आप सिंपल चीज़ें उठाइए, आप अगर अब कार देखिए, जो कार के नए नए मॉडल्स आते हैं उसमें सबसे बड़ा जो अट्रैक्टिव फीचर होता है, दो उसकी मशीन्स, इंजन, ये चीज़ें तो होती हैं, पर उसके डिजाइन भी बहुत होते हैं, उसके बहुत स्लिक डिजाइन होते हैं, थोड़ा सा इधर से चेंज किया, थोड़ा उधर से चेंज किया, सो फोर्थ। इवन मोबाइल कंपनीज नए नए मोबाइल्स लॉन्च करती हैं, उसमें भी अगर उनके एडवर्टाइजमेंट्स देखें या इवन उनके जो प्रमोशंस देखेंगे उसमें भी बहुत स्लिक नेचर, बहुत ही ज़बरदस्त डिजाइन दिया जाता है। जैसे कि एक बार आईफोन का ऐड देख रहे थे, उसके पूरे के पूरे बैनर में खाली उसने इतना लगा रखा था फ़ोन के अलग अलग एंगल से फोटो खींच खींच के, क्यों? बिकॉज इट वॉज जस्ट अ फॉर्म। फिर कल शाम को मैं देख रहा था, एक प्रोजी थे, एक अपने बच्चे का फोटो ले रहे थे, एंड पीपल आर वेरी फॉन्ड ऑफ टेकिंग द सेल्फीज, और फिर कई वो शादियों की फोटो रखते हैं, और फिर सो फॉर्म। द पॉइंट इज इतने सारे जो चीज़ें होती हैं दे आर जस्ट मेंट टू मेक अस अट्रैक्ट टुवर्ड्स द फॉर्म, जो फॉर्म के प्रति आकर्षण है। भक्ति की साइंस अभी प्रैक्टिकल है, जो रूप गोस्वामी जी ने बताया कि युक्तम वैराग्यम उच्यते, तो उसमें यथारम उपयुञ्जतम, कि उसमें जो भी एलिमेंट आपका इस नेचर में है उस चीज़ को हम भगवान की सेवा में लगा के अपना ग्रेजुअल प्योरिफिकेशन कर सकते हैं। सेम चीज़ डीडीज़ का फॉर्म होता है, दे आर जस्ट मेंट to make us attract towards the beautiful eternal form, सुंदर सनातन शरीर भगवान का, दिव्य रूप भगवान का से अट्रैक्ट करना, rather than उससे से अट्रैक्ट करना जो temporary है इस दुनिया में, temporary नेचर में, जो फॉल्स ब्यूटी के पीछे बेसिकली हम भाग रहे होते हैं। देन फर्दर इसमें एक चीज और आती है कि एक टर्म आता है साइंस में, उसको कहते हैं एंथ्रोपोमॉर्फिज्म. ये टर्म जो होता है बेसिकली इसमें कहते हैं कि गॉड इज मेड इन द इमेज ऑफ मैन, जो भगवान है वो आदमी के या मनुष्य के स्वरूप में बनाए गए हैं. इसे विज्ञान में एंथ्रोपोमॉर्फिज्म बोलते हैं. और एक बहुत ही प्रसिद्ध स्वामी रहे हैं इंडिया में, जिनके बहुत से लेख यूजली कॉलेजेस में स्कूलों में स्टूडेंट्स पढ़ते थे और बहुत ही मोटिवेशनल उनकी बुक्स हुआ करती थी. तो कई ऐसे वर्सेज आपको उनकी बुक्स में मिलेंगे, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरण निबोधत, उठो जाग और इस चीज़ को प्राप्त करो, अपने लक्ष्य को प्राप्त करो, अपने एम्बिशंस को प्राप्त करो. तो काफ़ी लोग मोटिवेट फील करते थे अपने लक्ष्य को लेकर, अपने एम्बिशंस को लेकर. और ऐसे मैं एक बार इस पूरे श्लोक को पूरा कर रहा था, उद्देश्य जागृत पाप वरण निबोध स्वरस्य धारा निष्ठा वृत्या दुर्गम पथस्थत कवयो वदन्ति. तो स्टूडेंट्स कहते थे, बोले थे तो आधे का पार्ट तो पता ही था हमें. तो मैंने बोला कि पहला पार्ट कैसे पता था? तो पहला पार्ट तो सबको पता होता है, क्योंकि जब भी हम कोई मोटिवेशनल बुक्स इन स्वामी जी की पढ़ना चाहते थे तो ये उद्देश्य जागृत प्राप्त वरण निबोध तो मिलता था कि उठो जागो अपने लक्ष्य को प्राप्त करो. लेकिन क्या है वो लक्ष्य? वो आगे के दो श्लोकों में दिया है, प्राप्य वरण निबोध सूर्यस्य धारा निशिता दुर्गत्या दुर्गम पथस्थत कवयो वदन्ति. तो ऐसे उन्होंने बहुत से ऐसे ऐसे स्टेटमेंट दे रखे थे जो बहुत फैसिनेटिंग लगते थे और खास करके यंगस्टर्स को. उन्होंने ऐसे एक स्टेटमेंट दिया था कि जैसे मनुष्य हैं, मनुष्यों ने एक अपने इमेजिनेशन से, अपनी मनगढ़ंत धारणाओं से एक भगवान के अर्ष विग्रहों का निर्माण कर लिया. जैसे हम हैं वैसे अपने हिसाब से हमने भगवान को बना लिया. तो सेम ऐसी चीज हो सकती है कि जैसे जानवरों का समाज है, जैसे अगर कुत्तों का समाज हो या और भी अलग अलग जानवरों का समाज हो, तो अपने हिसाब से अपनी डिटीज बना सकते हैं, उनकी वर्शिप कर सकते हैं. सो इट्स नॉट एनीथिंग ग्रेट इन दिस, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है अगर हम अर्चकों की पूजा करते हैं तो. बट ये जो लॉजिक था बहुत लोग अपील करता था, बहुत लोग अपील करता था, हाँ बहुत एकदम सही है कि ये जो अर्ष वगैरह बनाए गए हैं, ये जो मूर्तियाँ बनाई गई हैं ये हमारे हमारी स्वयं, मतलब वी आर द ओरिजिनल एंड दे आर द रिफ्लेक्शंस, दैट्स द पॉइंट. बट 11वें स्कंद में भागवतम में भगवान बताते हैं कि भगवान ने जब 84 लाख योनियों की रचना की थी ना, तो इन सारी योनियों में जो सबसे प्रिय योनि भगवान की थी वो मनुष्य थी. और जो सबसे प्रिय थी ना, जो सबसे प्रिय चीज जो कोई होती है किसी की, वो एज इट इज अपना स्वरूप देना चाहता है उसको. तो इस मनुष्य रूप को भगवान ने एज इट इज रखा अपने जैसा, उसको चेंज नहीं किया. बाकी रूप अलग अलग विकृतियों में होते हैं, अलग अलग प्रकार के होते हैं, किसी के हाथ नहीं होते, किसी के पैर नहीं होते, कोई रेंग रहा होता है, कोई उड़ रहा होता है. बट जो मनुष्य है दे आर इन द सेम फॉर्म एज द सुप्रीम लॉर्ड. व्हाई? बिकॉज कृष्ण लव्ड दिस, भगवान इस योनि को सबसे ज्यादा प्रेम करते थे. क्यों? क्योंकि इस योनि में सबसे ज्यादा सुविधा है, ऐसे सबसे ज्यादा नहीं, इसी योनि में सुविधा है जाने की भगवत धाम. निर्दय आद्यम सुलभम सब दुर्लभम, इट्स वेरी डिफिकल्ट. ये जो भव सागर पार करना बहुत मुश्किल है, और इस मनुष्य देह को पार, मनुष्य देह को पाना तो और भी मुश्किल है. लेकिन भगवान ने इसको बहुत सुलभ किया, बहुत आसान किया. कैसे? ये मनुष्य देह दे करके. फर्दर प्रपद जो प्रपद में एम्फसाइज कर रहे हैं, एम्फसाइज कर रहे हैं कि जो अर्च विग्रह हैं उनकी जो आराधना है वो भक्ति से ही हो सकती है. मतलब कोई भी प्रोसेस, कोई भी प्रोसेस आप उठाइए जो हमें प्योरिफिकेशन का प्रोसेस आधार में आगे बढ़ने में हेल्प करता है, उसमें कहीं ना कहीं भक्ति का एक टिंज होना चाहिए, भक्ति का एक एलिमेंट होना चाहिए, ताकि हम प्योरीफाई हो सकें. इवन आप भगवद्गीता में देखेंगे तो जितने पद्धतियाँ हैं आपकी, जैसे कर्मयोग हो गया, ज्ञान योग हो गया, ध्यान योग हो गया, इन सारे योगों में एक चीज जो व्यक्ति को प्रोग्रेस करने में हेल्प करती है और जिसके कारण व्यक्ति एक्चुअली प्रोग्रेस कर पाता है, वो होता है दैट इज अ टिंज ऑफ भक्ति. कर्मयोग हो तो कर्मयोग में आप देखेंगे जितने भी बड़े बड़े वैदिक मंत्रास होते हैं उसमें सारे मंत्र शुरुआत होते हैं ओम से, और ओम शब्द इज प्रणव सर्व वेदेशु, दैट इज द सिंबल ऑफ विष्णु ओम. और उसी प्रकार से ध्यान योग देखेंगे, ध्यान योग में धीरे धीरे व्यक्ति को परमात्मा का साक्षात्कार होता है और फिर आगे बढ़ता है, क्योंकि भगवान उसमें से एक एलिमेंट ऑफ भक्ति देखते हैं जिसके कारण उसकी प्रोग्रेस हो पाती है उस पाथ में. और डायरेक्टली इस पटपट में श्री प्रभुपाद ने इसके ऊपर बोल रखा है कि भक्ति के बिना अब ये प्रोसेस जीवन जो पयोव्रत है वो सक्सेसफुल नहीं हो सकता है. यहाँ पर एक पॉइंट बड़ा एम्फेसिस है कि ड्यूटी वर्शिप, मतलब अर्ष विग्रहों की सेवा, और आइडल वर्शिप मूर्ति पूजा, मूर्ति पूजा और अर्ष विग्रहों की पूजा, इनमें क्या भेद है? इनमें भेद खाली एक ही है, भक्ति का. एक भक्ति है, एक में भक्ति नहीं है. आइडल वर्शिप क्या होती है? आइडल वर्शिप जैसे कि श्री प्रभुपाद बताया करते थे कि जैसे एक कलकत्ता में एक जगह होती थी चौरंगी स्क्वायर, अपने बुक में प्रभुपाद जी बताते हैं कि वहाँ पे किसी एक महान हस्ती का बड़ा सा स्टैचू है जो लगा हुआ था। तो जब भी उस महान व्यक्ति का वो होता था, जयंती होती थी या उनका जो भी बर्थडेट्स होती थी, उस पर जो भी सेलिब्रेशंस की जाती थी, तो होता क्या था कि जो साल भर उनके जो मूर्ति होती थी उस पर कौवा आके गंदगी करता था। और फिर जिस दिन जो भी पर्टिकुलर महान व्यक्ति उनकी जयंती मनाई जा रही होती थी, तो म्यूनसिपालिटी का कोई सफाई करने वाला एक झाड़ू लेके आता था, और उस झाड़ू से उस पूरे पुतले को साफ करता था, पानी से धोता था। शाम को जो भी इलाके के बड़े व्यक्ति होते थे, मंत्री जी या विधायक वगैरह, आगे उनको माला अर्पित करते थे, बहुत अच्छा सेलिब्रेशन होता था। दैट्स इट, इसे कहते थे आइडल वर्शिप, जिसका कि मूर्ति और व्यक्ति से कोई संबंध नहीं। वो व्यक्ति कहाँ है, किस योनि में है, किस लोक में है, कुछ पता नहीं, लेकिन उसकी मूर्ति वहाँ यहाँ पूजी जा रही है, अलग अलग बड़े बड़े राजनेताओं की। लेकिन अर्च विग्रह में फर्क है, अर्च विग्रह और मूर्ति, अर्च विग्रह भक्ति द्वारा पूजे जाते हैं, भक्तों द्वारा पूजे जाते हैं। प्रभुपाद जी जब 1976 में मायापुर में थे, तो हरिश्वरपुर ट्रांसलेटर लाइब्रेरी में मेंशन करते हैं कि उस टाइम पे एक लोटस बिल्डिंग बनी थी और टेंपल वर्क का एक स्ट्रक्चर बन चुका था, और बहुत सारे भक्त आने वाले थे उस साल मायापुर एनुअल फेस्टिवल के लिए। और प्रभुपाद ने मतलब आई थिंक ही अराइव अराउंड 15th or 18th of January वहाँ प्रभुपाद आए थे, और गौर पूर्णिमा फेस्टिवल उस साल 20 मार्च के आसपास होनी थी, उससे 15 दिन पहले भक्त आने वाले थे विदेशों से, अलग अलग जगहों से, और बहुत भारी मात्रा में आने वाले थे, 1976 की बात है। तो ये हुआ कि उस समय जो वहाँ के करंट मैनेजर्स थे, जो वहाँ के पूरे मायापुर प्रोजेक्ट के परम पूजनीय जयबताका स्वामी महाराज और इस होलीनेस भावन स्वामी महाराज, ये लोग वहाँ के ओवरऑल मैनेजमेंट देखते थे, तो उन्होंने प्रायोरिटीज़ पूछी कि हमारी क्या प्रायोरिटीज़ होनी चाहिए, क्या हम इस टेम्पल हॉल के कंस्ट्रक्शन पे अभी फोकस करें, इसको आगे बढ़ाएं, कि और कुछ करना है। तो श्रील प्रभुपाद ने बोला कि हमारा सबसे पहला जो उद्देश्य होना चाहिए भक्तों के रहने और उनके रहने की व्यवस्था होनी चाहिए प्रॉपर। तो उस टाइम पे वो लॉन्ग बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ था, बहुत ही फास्ट कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ था, ताकि एटलीस्ट फेस्टिवल आते आते वो पूरा कंस्ट्रक्शन पूरा हो जाए। क्यों प्रभुपाद ने एम्फसाइज किया था वहाँ पे, बोलते हैं प्रभुपाद कि इफ देयर आर नो डिवोटीज टू वर्शिप द लॉर्ड, अगर वहाँ पे भक्त नहीं है भगवान की पूजा करने के लिए, तो इट वुड बी सिंपली एन आइडल वर्शिप, ये सिंपली आइडल वर्शिप ही होगा, क्योंकि भगवान की पूजा, भगवान की आराधना खाली भक्तों द्वारा ही की जा सकती है, वो कोई मतलब बाहर के व्यक्ति या कोई पेड व्यक्ति नहीं कर सकता, उसके लिए भक्ति ही चाहिए सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट। उसी प्रकार से आइडल वर्शिप में एक चीज़ और बताई जाती है कि इवन जो अर्थ के ग्रहों की हम आराधना करते हैं, कि उनमें उनके उनको भी अगर हम बहुत ही ऑन रेवरेंस रिस्पेक्ट और जो भी नियम बताया गया उनके साथ नहीं करते हैं, तो बताया जाता है इट इज एज इक्वल टू वर्शिपिंग एन आइडल। तो इसके हम उदाहरण देते थे शिला भक्ति सनासी ठाकुर, शिला द्वारा बादाम भंग। तो क्या इसका स्टोरी था कि वृंदावन के कई मंदिर हुआ करते थे, कई जगह मंदिर हुआ करते थे, तो गोस्वामीगण अर्च विग्रहों के दर्शन कराया करते थे। तो दर्शन कुछ एक दर्शन इस तरह प्रकार से हुआ करते, जैसे मैनिक्विन दर्शन होते हैं, जैसे कि पुतले होते हैं ना आपके बड़े बड़े शॉप्स में, बड़े बड़े स्टोर्स में पुतलों के दर्शन कराते हैं अपने कपड़े को ब्रांड करने के लिए, किसी चीज़ को ब्रांड करने के लिए। उसी प्रकार से बताते थे भक्तिनाथ ठाकुर कि कई बार लोग शालिग्राम शिलाओं के दर्शन कराते थे, और दर्शन कैसे होता था कि आपको चढ़ाइए तो आपको दर्शन होगा, अगर नहीं चढ़ाइए तो दर्शन आपको नहीं हो सकता। और फिर क्या होगा कि 12 बजे 12:30 बजे जब भी अंदर ऑल्टर बंद होगा, तो फिर वही जो उनको चढ़ावा आया उस चढ़ावे से बादाम खरीदते थे। तो पहले जो बादाम हुआ करते थे उनको फोड़ना पड़ता था, दे हैव टू बी ब्रोकन। अब जब उन्होंने चढ़ावा चढ़ाया, उस चढ़ावे से बादाम खरीदे, और जो बादाम आ चुका है उसको फोड़े कैसे, उसको फोड़ने के लिए कुछ है नहीं, कुछ मिल रहा कैसे फोड़ा है, तो कुछ पत्थर चाहिए उसके लिए जिससे उसको फोड़ा जा सके। तो भक्तिनाथ ठाकुर बोलते थे शिला द्वारा बादाम भंग। तो वही शिला जिसको दिखा के आप पूरा कलेक्शन कर रहे थे, उसी चीज़ को आप यूज करके फोड़ के बादाम खा रहे थे। दैट इज द थिंग, शिला द्वारा बादाम भंग। मीन्स पॉइंट इज कि डिवोशन इज रिक्वायर्ड बिहाइंड वर्शिपिंग द सुप्रीम लॉर्ड। और आखिरी के 10 मिनट में आपको कुछ ऐसे चार उनके बारे में बताऊंगा, चार ऐसी स्टोरी आती हैं चरितामृत में, जिससे एक्चुअली ना कई बार ऐसा होता है कि जब डीडी वर्शिप हम कर रहे होते हैं और इवन जब अर्च विग्रहों की आराधना कर रहे होते हैं, तो कई बार ऐसा लगता है कि पता नहीं भगवान खाते भी हैं कि नहीं खाते हैं, और भगवान हमारी सेवा स्वीकार कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इसी प्रकार से आर्य समाज जी प्रभुपाद को बॉम्बे में मिला था, और उसने पूछा था कि स्वामी जी आप तो भगवान को भोग लगाते हैं, आप प्लेट में जितना चीज़ें देते हैं भगवान को, वो सारी की सारी चीज़ें जैसी जाती हैं वैसी बाहर आ जाती हैं, तो भगवान ने कहाँ खाया, जैसा दिया वैसे ही बाहर आ गया। भगवान ने कहाँ खाया? तो प्रभुपाद ने बोला कैसे बता आपको कि भगवान नहीं खाया? बोला कि मैंने देखा ना, जितना गया उतना ही बाहर आया, तो भगवान ने खाया कैसे? तो प्रभुपाद ने बोला ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ कि भगवान खाए कि नहीं खाए। फिर प्रभुपाद ने 9.26 कोट किया, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। उसमें कहा अश्नामी प्रेतात्मना। तो वो भगवान यहाँ कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? अश्नामी प्रेतात्मना, कि मैं स्वीकार करता हूँ। तो अब यह होता मैं किसकी बात मानू, आपकी मानू, आपके जैसे लोफर की बात मानू, कि भगवान की बात मानू, किसकी बात मानू? मैं कि भगवान कह रहे हैं अश्नामी प्रेतात्मना, मैं स्वीकार कर रहा हूँ। तो इसमें कैसे नहीं माना जाए कि भगवान नहीं स्वीकार कर रहे हैं? तो आप देखेंगे कि डीटीज का जो रिलेशन होता है भक्तों के साथ बहुत ही नाना प्रकार का होता है। इसमें एक बेसिकली 30 स्टेजेस हैं जिसको थोड़ा सा मैं एनालाइज कर पाया था। कि एक होता है जो भगवान के जैसे नित्य पार्षद होते हैं, वो अपने अपने आचरण द्वारा कई ऐसी चीज़ें हमें दिखाते हैं, कई ऐसी चीज़ें सिखाते हैं हमें, जिसके कारण हमें भगवान की ना अर्चकों की आराधना बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल्स और रेगुलेशन के साथ करनी चाहिए। उसमें जो सबसे प्रमुख उदाहरण आता है वो आता है चैतन्य चरितामृत में राघव पंडित जी का। राघव पंडित जी भगवान के नित्य पार्षद थे, और ये प्रसंग आता है मध्य लीला के अध्याय 15 के पयार संख्या 80 से शुरू होता है ये। और ये प्रसंग उस समय चल रहा था कि जितने भी पार्षद महाप्रभु के आए थे बंगाल से जगन्नाथपुरी चतुर्मास में, और वो सारे के सारे लौट रहे हैं वापस। और जब वापस लौट रहे हैं तो महाप्रभु एक एक भक्तों से मिल रहे हैं, और मिलते मिलते सबको विदाई दे रहे हैं। तो राघव पंडित जी के इस प्रसंग से जस्ट पहले प्रसंग आता है कि शिवास ठाकुर जब जा रहे होते हैं, उनको शिवास ठाकुर को फेयरवेल दे रहे होते हैं महाप्रभु। तो वहाँ पे वो मेंशन करते हैं कि जो मदर सची, जो माँ सची थी, वो रोज भोग अर्पित करती थी अपनी गोपाल विग्रहों को। और महाप्रभु ये चीज़ हम प्रचारित करना चाह रहे थे कि इवन मदर सची ना इंटरनली जानती थी कि जितना मैं भोग अर्पित करती हूँ वो सारा का सारा श्री चैतन्य महाप्रभु एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन फिर बाहर रूप से लेकिन दिखाने के लिए उनको लगता था पता नहीं इन्होंने एक्सेप्ट किया नहीं किया क्या किया। तो महाप्रभु ने एक इंसिडेंट शिवास ठाकुर को बताया। इंसिडेंट क्या था कि आप मदर सची को बताना विजयदशमी की घटना, इसमें कि विजयदशमी की घटना पे मैं स्वयं आया था उन अर्ष विग्रहों में, और आके मैंने वो भोग स्वीकार किया था। मैं उस सेक्शन को पढ़ के देख बताता हूँ। महाप्रभु कह रहे हैं मैं यहाँ जगन्नाथपुर नीलाचल में उनके आदर्शों का पालन करने के लिए रुका हूँ, मतलब उनका मतलब मदर सची का, माता सची का, किंतु बीच बीच में मैं उनके चरण कमलों का दर्शन करने आता रहूंगा। वास्तव में मैं रोज ही वहां अपनी माता के चरण कमलों का दर्शन करने आता हूँ। यद्यपि उन्हें मेरी उपस्थिति का आभास होता है पर वे इस सत्य को नहीं मानती। एक दिन मेरी माता सची देवी ने शालिग्राम विष्णु को भोजन अर्पित किया। उन्होंने शालिग धान से पकाया चावल, तरह तरह की तरकारियां, पालक, केले के फूलों की बनी कड़ी, नीम की पत्तियों के साथ तले पटोल, नींबू समेत अदरक के टुकड़े, दही, दूध, खांड तथा अन्य पकवान अर्पित किए। अपनी गोद में भोजन लेकर तथा यह याद करके मेरी माता रो रही थी कि वह भोजन तो मेरे निमाई को अत्यंत प्रिय है। मेरी माता सोचती रही कि यहाँ पर निमाई नहीं है, ये सारे भोजन कौन ग्रहण करेगा। जब वे मेरे बारे में इस तरह सोच रही थी तो उनकी आंखों से आंसू भर आए। जब वे इस तरह सोचकर रो रही थी तो मैं जल्दी से वहां गया और सब भोजन ग्रहण कर लिया। थाल की खाली थाली देखकर उन्होंने अपने आंसू पोंछ लिए। तब मैं आश्चर्य करने लगा कि किसने सारा भोजन खा लिया, यह थाली खाली क्यों है। यह आश्चर्य सची माता को हो रहा है। उन्होंने आश्चर्य हुआ कि कहीं बाल गोपाल ने तो नहीं खा लिया। वे आश्चर्य करने लगे कि थाल में भोजन पहले से था ही नहीं। फिर उन्होंने सोचा कि हो सकता है कोई पशु आकर सारा भोजन खा गया हो। उन्होंने सोचा कि हो सकता है गलती से मैंने थाल में भोजन रखा ही नहीं। इस तरह सोचते हुए रसोई घर में वापस गई और बर्तनों को देखा। जब उन्होंने देखा कि सारे बर्तन खाली हैं तो उनके मन में कुछ संदेह हुआ और वो अचंभित हुई। इस तरह आश्चर्यचकित होकर उन्होंने अपने नौकर ईशान को बुलाया और इस स्थान को फिर से सफाई करवाई। तब उन्होंने गोपाल की दूसरी थाल अर्पित की। अब जब भी वे कोई अच्छा भोजन बनाती और मुझे वो भोजन खिलाना चाहती तब वे उत्कंठावश होने लगती। उनकी प्रेम के वशीभूत होकर मैं वहां भोजन करने के लिए जाता। मेरी माता ये बातें भीतर भीतर जानती हैं और सुखी होती हैं, किंतु बाहर से वे इन्हें नहीं मानती। ऐसी घटना पिछले विजयदशमी के दिन घटी है। तुम, मतलब ये शिवा ठाकुर को बोल रहे हैं चेतन महाप्रभु, कि तुम उनसे इस घटना के बारे में पूछ सकते हो और उन्हें विश्वास दिला सकते हो कि मैं सचमुच वहां आता हूं। मतलब कि भगवान साक्षात यह बताना चाह रहे हैं कि अगर प्रेम पूर्वक भगवान को अगर अर्पित किया जाए तो भगवान बाकी इस चीज को स्वीकार करते हैं, और इस लीला से इस चीज का उदाहरण मिलता है। इसके बाद महाप्रभु दूसरी एक और लीला बताते हैं राघव पंडित के बारे में। राघव पंडित से मिलते हैं भगवान महाप्रभु, कहते हैं इसके बाद श्री चैतन्य महाप्रभु राघव पंडित से मीठी वाणी में बोले, मेरे प्रति तुम्हारा प्रेम शुद्ध है जिसके लिए मैं तुम्हारा कृतज्ञ हूँ। तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने सबसे कहा, सुनो तुम लोग राघव पंडित द्वारा की गई शुद्ध भक्ति के बारे में सुनो। राघव पंडित की सेवा परम शुद्ध तथा सर्वोत्तम है। अन्य वस्तुओं के अतिरिक्त उसने उसके द्वारा नारियल भेंट किए जाने के बारे में सुनो। ये नारियल 5 गंडे में बिकता है। गंडा, आई डोंट नो गंडा कौन सा करेंसी हो, बट यह था कि बहुत महंगा नारियल वो लाते थे। यदि भी उनके पास पहले से सैकड़ों वृक्ष तथा लाखों फल हैं, किंतु फिर भी वो उस स्थान के विषय में सुनने के लिए अत्यधिक उत्सुक रहते हैं जहां मीठे नारियल मिलते हों। वो 20 मील दूर स्थान से भी नारियल का यत्न पूर्वक लाते हैं और हर नारियल के लिए 4 पण चुकाते हैं। प्रतिदिन 5-7 नारियल छीलकर उन्हें शीतल बनाए रखने के लिए जल के भीतर रखते हैं। भोग लगाते समय नारियल को फिर से छीला जाता है और साफ किया जाता है। उनमें ऊपर से छेद करने के बाद कृष्ण को अर्पित किया जाता है। इन नारियलों का जल कृष्ण पीते हैं और कभी कभी नारियलों को जल निकालकर उन्हें पूरी तरह से खाली कर दिया जाता है। कभी कभी नारियलों में जल भरा रहता है। जब राघव पंडित देखते हैं कि नारियलों का जल पी लिया गया है तो वह अत्यंत प्रसन्न होते हैं। तब वो नारियल तोड़कर गरी निकालकर उसे अन्न थाल पर रख देते हैं। गरी चढ़ाने के बाद मंदिर के बाहर ध्यान करते हैं। इस बीच भगवान कृष्ण सारी गरी खा लेते हैं। कभी कभी गरी खाने के बाद कृष्ण थाल की नई गरी से भर देते हैं। इस तरह राघव पंडित की श्रद्धा बढ़ती है और प्रेम के सागर में तैरते रहते हैं। मतलब भगवान साक्षात आते थे, नारियल का पानी पीते थे और गरी खाते थे। फिर आगे बता रहे हैं कि इस चीज में इतना रूल्स रेगुलेशन फॉलो करते थे राघव पंडित, और सफाई के लिए तो बहुत ज्यादा ध्यान रखते थे राघव पंडित। तो उसका अगला प्रश्न बता रहे हैं इसमें कि एक दिन ऐसा हुआ कि एक नौकर अर्ष विग्रह पर चढ़ाने के लिए लगभग 10 छिले हुए नारियल लेकर आया। जब नारियल लाया उस समय नारियलों को चढ़ाने के लिए समय ना था, मतलब समय बहुत थोड़ा बचा हुआ था नारियल को चढ़ाने के लिए, क्योंकि पहले ही काफी विलंब हो चुका था। अतः वह नौकर नारियल के पात्र को पकड़े हुए दरवाजे पर ही खड़ा था। राघव पंडित ने देखा कि इस नौकर ने दरवाजे के ऊपर की छत छुई है और उसी हाथ से नारियल को छू लिया है। तो राघव पंडित ने कहा, लोग इस दरवाजे से लगातार आते जाते हैं, उनके पैरों की धूल उड़कर छत को छूती है। तुमने दरवाजे के ऊपर की छत छूकर नारियल को स्पर्श किया है। अब वे कृष्ण पर चढ़ाने लायक नहीं रह गए कि क्योंकि वे दूषित हो गए हैं। इस प्रकार राघव पंडित की सेवा ऐसी थी जिन्होंने उन्होंने उस नारियल को नहीं लिया अपितु उन्होंने दीवार के बाहर फेंक दिया। उन्होंने ये सेवा अन्य प्रेम पर आश्रित है और वो सारे जगत को जीतने वाली है। श्री भक्तिजान ठाकुर इस परपट में लिख रहे हैं इस वर्ष के कि इसको इंग्लिश में लिखा था, ही हैड सम क्लेंजिंग फोबिया। उनको लगता है सफाई का हमेशा कोई ना कोई भूत चढ़ा रहता था, इस कारण से लगता है ऐसा नहीं था। उन्होंने हर चीज टॉप क्लास भगवान को ऑफर करने की सोच रखी थी। और यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ, राघव पंडित कोई ऐसे वैसे सिरफिरे मनुष्य नहीं थे जिन्होंने सफाई की धूल सवार दी। मतलब ही वॉज वेरी कॉशियस अबाउट ऑफरिंग टू द लॉर्ड, कि भगवान को बेस्ट चीज ऑफर हो और बेस्ट स्टैंडर्ड के साथ ऑफर हो। ये प्रसंग राघव पंडित का आता है। तो ये प्रसंग में भगवान ने ये दिखाने की कोशिश की कि किस प्रकार से भक्त जो हैं अपनी बेस्ट ऑफरिंग्स मेरे को अर्पित करें और मैं उसको एक्सेप्ट करूँगा। अब यही भक्ति की जब स्थिति बढ़ती है, प्रेम भक्ति में स्थिति जब बढ़ती है, तो भगवान खुद प्रकट होते हैं और भक्तों से डिमांड करते हैं कि भाई मेरे को ये चीज़ चाहिए और ये मेरे को आप ला के दो। सेम चीज़ चैतन्यमृत के मध्य लीला में आता है, चौथे अध्याय में वो प्रसंग आता है माधवेंद्रपुरी का। भगवान 3 बार सपने में आके आदेश देते हैं, एक बार आप मेरे को यहाँ सिंदूर से निकालो, दूसरी बार आप मेरे चंदन लेके आओ, और फिर दूसरी बार चंदन लेके आओ, तीसरी बार चंदन आपको गोपाल को अर्पित करने की जरूरत नहीं है, आप यहीं गोपीनाथ जी के विग्रहों को अर्पित कर सकते हो। और जो सबसे परम अवस्था ये होती है कि एक तो हो गया कि जो विधि विधान लिखे हैं उसके आधार पे आप भगवान को कुछ भोग लगा रहे हैं, भगवान आपके सपने में आ रहे हैं बता रहे हैं कि मुझे ये अर्पित करो। कई बार प्रेम भक्ति की इतनी चरम अवस्था होती है कि जो भक्त होता है वो फोर्सफुल भगवान को कुछ खिलाना चाहता है। एक उदाहरण आता है चैतन्य चरितामृत के रघुनंदन ठाकुर के लाइफ में। रघुनंदन ठाकुर नरहरि सरकार और मुकुंद सरकार, मुकुंद सरकार और नरहरि सरकार ये दोनों ब्रदर्स थे और मुकुंद सरकार के जो पुत्र थे वो थे रघुनंदन ठाकुर। तो और रघुनंदन ठाकुर वॉज इनोसेंस पर्सनिफाइड, बहुत ही सरल एक बालक थे लेकिन कृष्ण प्रेम में पूरी तरह से अप्लावित थे। तो एक बार मुकुंद सरकार एक रॉयल फिजिशियन थे, उनको एक अपनी सेवा के लिए जाना पड़ता था जो वहाँ के राजा हुआ करते थे उनके इलाज वगैरह के लिए। तो एक बार उन्होंने जल्दी जल्दी में ये चीज़ बोल के गए मुकुंद को कि आज गोपीनाथ जी को आप ये लड्डू ये राजभोग भोग लगाना दोपहर में। तो एज अ चाइल्ड उन्होंने वर्ड्स को एज इट इज एक्सेप्ट कर लिया और ये बोल के गए थे मुकुंद सरकार कि ये एश्योर कर लेना कि जो गोपीनाथ है ना वो भोग स्वीकार कर लेना, एश्योर कर लेना कि भोग स्वीकार कर लेना। तो रघुनंदन ठाकुर गए अंदर अर्चग्राम पास गए और जाके उन्होंने भोग अर्पित करना शुरू किया भगवान को। जब अर्पित करना शुरू किया तो भगवान खा नहीं रहे थे, बहुत प्रयास किया भगवान आप ले लो, तो भगवान बोले नहीं, भगवान बोले ले लो, भगवान एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं। फिर मतलब बहुत प्रयास किया ले लो, ये क्या ग्लांस फिलोसफी है कि हमेशा आप क्या कि दृष्टिपात से खाओ क्या, कभी मैं खिलाने आया मेरे हाथ से खा लो, जरूर दृष्टिपात से एक्सेप्ट करोगे चीज़ों को ले लो। बट मैंने फाइनली उनको छड़ी उठानी पड़ी कि आप लोगे कि नहीं लोगे, क्योंकि मेरे पिता ने मेरे को सेवा दे गए हैं, जब तक आप इसको एक्सेप्ट नहीं करोगे मैं यहाँ से बाहर नहीं निकल सकता। और फिर वहाँ पे क्या देखा, गोपीनाथ स्वयं नीचे आते हैं और आके उस भोग को स्वीकार करते हैं और पूरा राज्य स्वीकार कर लेते हैं और फिर बढ़िया से साफ सफाई करते हैं, पूरा वेंडअप करते हैं और बाहर आते हैं। मुकुंद सरकार आते हैं, बोलते हैं आपने भोग लगा दिया था भगवान को, बोला हाँ लगा दिया था भगवान को। तो फिर महाप्रसाद लाइए, तो बोला महाप्रसाद कहाँ से लाए, तो भगवान ने खा लिया सारा। तो उनको लगा क्या मजाक कर रहा है, हो सकता है खुद खा लिया, वो झूठ बोल रहा है। तो बोला कि नहीं सही भगवान ने खा लिया। मुकुंद सरकार को थोड़ा सा बोला कि बच्चा कहीं झूठ कहीं बोलेगा नहीं ऐसा कभी कि भगवान ने खा लिया वो। तो बोला ठीक है फिर भोग लगाना, फिर मैं देखता हूँ। तो भोग लगाने गया तो बाहर खिड़की से मुकुंद सरकार देखने लगे कि कैसे भोग लगा रहे हैं। फिर उन्होंने प्रयास किया भगवान खिलाने का, भगवान खा लो। फिर कोशिश किया भगवान खा लो, भगवान दो तीन बार कोशिश करने गया। फिर उन्होंने फिर छड़ी उठाई, भगवान ले लो इस बार। फिर भगवान आ गया, पूरा भोग स्वीकार किया, चले गए। और लड्डू था, एक लड्डू खाया था, आधा खाया था, आधा भगवान ने छोड़ दिया था। इस चीज़ को देख के मुकुंद सरकार बड़े आश्चर्यचकित हुए कि भगवान स्वयं आए, स्वयं खाए और चले गए। तो फिर ऐसे ही एक बार चैतन्य महाप्रभु ने पूछा था कि आप दोनों में से पिता कौन है, ये पिता है कि आपके ये पिता है। तो मुकुंद सरकार ने बताया कि नहीं ये पिता है मेरे, क्योंकि ये मेरे से ज़्यादा उन्नत है भक्ति में, भगवान स्वयं के हाथ से आगे खाते हैं। फिर महाप्रभु ने अपने जो तीनों पार्षद थे, नरहरि सरकार, मुकुंद सरकार और रघुनंदन ठाकुर, ने तीनों को अलग अलग निर्देश दिए थे और रघुनंदन ठाकुर को दिया था कि आप स्वीकारों की आराधना करिए। तो मैं एक विराम देना चाहूँगा, 5 मिनट ज़्यादा हो गए। सभी भक्तों का धन्यवाद।